Okay, we want to speak today about being filled with the Holy Spirit.
और आज हम बात करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के से भरने के बारे में.
Pressing on toward the mark.
और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के बारे में.
We don't read such things in the Old Testament.
हम पुराने नियम में ये सारी बातें नहीं सीखते.
We don't read about Moses or Elijah saying I'm pressing towards the mark.
और हम ये नहीं सुनते मूसा एलिया कहते हुए कि मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं.
They were only interested in preaching and bringing Israel back to God.
और इसराइल को प्रभु के पास वापस लाने में और प्रचार करने में उनकी रुचि थी.
Paul traveled the world to make disciples.
और पौलुस ने भी पूरे संसार के अंदर वो सफर कर रहा था शिष्य बनाने के लिए.
To his ministry, he had a personal goal.
लेकिन उसके सेवकाई से और ज्यादा उसके एक व्यक्तिगत लक्ष्य था.
That is, I want to become more like Jesus Christ.
और वो ये चाहता था कि मैं यीशु मसीह के समान बनूं.
And for that, we cannot do it without being filled with the Holy Spirit all the time.
और ये हम पवित्र आत्मा के निरंतर भरे जाए बिना हम नहीं कर सकते.
The doctrine of the Holy Spirit is the most confused doctrine in Christendom today.
और पवित्र आत्मा का जो जो सिद्धांत है आज बहुत ही ज्यादा इसको नहीं गैर समझ इसमें होती है.
Being born again, almost all Christians understand it.
और सारे मसीह नया जन्म पाने के सिद्धांत को समझ पाते हैं.
How to be born again? The Pentecostal and the brethren and Baptist all will say the same thing.
और कैसे नया जन्म पाना है एक ब्रदर एंड बैप्टिस्ट हर एक समान कहते हैं.
There's not difference between the brethren and Pentecostal and that doctrine of being born again.
और उस सिद्धांत जो ब्रदरन और पेंटिकोस्टल का है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है.
In born, being born again.
और नया जन्म पाने के बारे में.
But when it comes to being filled with the Holy Spirit.
लेकिन जब पवित्र आत्मा के बारे में भरने के बारे में होता है.
Tremendous differences in opinion.
और यहाँ पे भयानक एक मत का वहाँ पे अंतर है.
The Pentecostals say, once for all you will baptize in the Holy Spirit and you must speak in tongues.
और पेंटिकोस्टल कहते हैं कि जब आपको पवित्र आत्मा से भरते आपको अन्य भाषा में बोलना ही है.
And the brethren say when you are born again you are already baptized in the Holy Spirit, there's nothing to seek for.
और brethren कहते हैं कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए तब और
no,
आप
when you are born again
अब जब नया जन्म पाते हैं तभी आप पवित्र आत्मा से भरे पहले से ही होते हैं.
The tongues and all is from the devil.
और जो अन्य भाषा है वो शैतान की ओर से है.
It's two extremes.
ये दोनों दो छोर है.
So they agreed on how to be born again.
और ये कैसे वो नया जन्म पाने उनको पता है.
But when it comes to being filled with the Spirit, there's so much of difference.
लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरने के बारे में है तब बहुत सारा अंतर है.
One extreme, this is the other extreme.
ये एक दूसरी ओर है, ये दूसरी छोर है.
And I've discovered through the years.
और मैंने इतने सालों में ये ढूंढा है.
That when you have two extremes of teaching like this.
अगर दो इस प्रकार की छोर की कोई शिक्षा है.
Both are wrong.
दोनों ही गलत
है. Truth is somewhere else in the middle.
और मतलब सत्य उन दोनों के बीच में है.
So when you look at the New Testament,
और आप जब नए नियम को देखते हैं,
I want to present to you what the New Testament teaches about the Holy Spirit.
मैं नए नियम जो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है वो आपको दर्शाना चाहता हूँ.
I want you to learn a simple principle of Bible study.
और बाइबल अध्ययन का एक बहुत ही साधारण मैं आपको सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ.
I am not an evangelist. I am a Bible teacher.
मैं एक सुसमाचार प्रचारक नहीं हूं लेकिन मैं एक वचन का शिक्षक हूं.
I don't glory in that. It's a gift God gave me.
और मैं इसमें महिमा नहीं करता लेकिन मैं ये परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया.
It's not something I produced. God gifted me as a teacher.
और ये मैं अपने आप से उत्पन्न नहीं करता लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया सिखाने का.
I tried to be an evangelist in my younger days. I failed.
और जवानी के दिनों में एक सुसमाचार प्रचार बनने का कोशिश किया लेकिन मैं असफल रहा.
I still preach it but I have not been able to bring people to Christ like a person with a gift of evangelism.
और अभी भी मैं प्रचार करता हूं लेकिन उस वरदान के द्वारा जो सुसमाचार का है उसके द्वारा उनको प्रभु में नहीं ला पाता.
God has given different gifts to different people.
और अलग-अलग लोगों को परमेश्वर अलग-अलग वरदान देता है.
See for example it says in Ephesians 4.
इफिसी 4 अध्याय में हम देखते हैं.
Five different gifts God gives to people.
और पांच अलग-अलग वरदान जो परमेश्वर लोगों को देता है.
Christ has given to the church.
जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं.
Ephesians 4:11.
Ephesians 4:11.
Apostles,
प्रेरित,
prophets,
नबी,
evangelists,
और सुसमाचार प्रचारक,
pastors or shepherds and teachers,
और चरवाहे और शिक्षा देने वाले.
So these are, it says, gifts that God has, Christ has given to the church.
और ये सारे एक वरदान हैं जो मसीह ने कलीसिया को दिए हैं.
It's not somebody weak. Man cannot appoint this.
और मनुष्य से नियुक्त नहीं कर सकता.
You can't call a man and say, okay, I appoint you as an apostle.
और कोई मनुष्य आपको ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेरित करके नियुक्त करता हूँ. नहीं.
Impossible.
ये असंभव है.
Foolish.
ये मूर्ख बात है.
Only Christ can make a person an apostle.
केवल मसीह ही एक व्यक्ति को प्रेरित बना सकता
है. Apostle is one who plants churches and becomes like a father to them and appoints elders.
और प्रेरित वो है जो कलीसिया की स्थापना करता है, उसके ऊपर पिता और उसके ऊपर प्राचीन की नियुक्त करता है.
You try all your life, you cannot be an apostle if Christ does not appoint you.
अगर यीशु आपको नियुक्त नहीं करता, अपने जीवन भर आप प्रयत्न करें पर नहीं कर पाएंगे.
No man can lay his hands on you and say you are an apostle.
और कोई व्यक्ति आप पर हाथ रख के नहीं कह सकता आप एक प्रेरित है.
Prophet.
नबी.
Nobody can appoint you and say you are a prophet.
और कोई आपसे ये हाथ रख के नहीं कह सकता आप नबी हैं.
Christ appoints prophets.
लेकिन मसीह ये नियुक्त करता है.
You may want to be one, but you can't be if God doesn't appoint you.
आप चाहते होंगे नबी बनना, लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा.
Evangelist.
सुसमाचार प्रचारक.
Nobody can put his hands on you and say you are evangelist.
और आप हाथ रख के ये नहीं कह सकते आप सुसमाचार
प्रचारक. You cannot try to be one yourself.
और आप अपने आप से नहीं बन सकते.
For many years in my and after I was converted, I tried to be evangelist.
और मेरा बदलाव होने के बाद मैंने बहुत साल एक सुसमाचार प्रचार होने का प्रयत्न किया.
Preach on all the streets of Cochin.
और हर एक गलियों में कोचिन में मैं सुसमाचार करता.
2 years I covered every street.
और 2 साल में सारी गलियों में मैंने प्रचार किया.
Nobody was converted.
लेकिन किसी का बदलाव नहीं हुआ.
What do I learn?
मैं उससे क्या सीखता हूँ?
I am not an evangelist.
मैं सुसमाचार प्रचारक नहीं हूँ.
But when I began to teach the word, everybody would understand.
और जब मैं वचन सिखाने लगा, हर कोई उसे समझने लगा.
I learned I cannot make myself an evangelist.
इससे मैंने सीखा कि मैं अपने आप को सुसमाचार प्रचारक नहीं बना सकता.
God gifts me as a teacher.
और परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षा देने के लिए शिक्षक के रूप में वरदान दिया.
You cannot go to somebody and say, okay, I appoint you as a teacher.
और किसी के ऊपर आप हाथ रख के ऐसे नहीं कि मैं आपको शिक्षा देने के लिए नियुक्त करता हूं.
You should not feel guilty if you cannot teach the Bible like me.
अगर आप मेरे समान वचन नहीं सिखा सकते, आपको दोषित एहसास नहीं करना है.
If God give you the gift, you can teach better than me.
अगर प्रभु आपको वरदान देगा, आप मुझसे भी अच्छे सिखा सकते हैं.
I am not condemned that I cannot evangelize some young brother who's a first class evangelist.
और मैं इस प्रकार मैं अपने आप को दोषित नहीं करता कि कोई जवान इस प्रकार सुसमाचार दे पा रहा है.
Praise the Lord, God has given him.
अगर वो कर पा रहा है, प्रभु की स्तुति, वो प्रभु का वरदान है.
I told you about 4 of them.
मैंने 4 के बारे में बताया.
Apostle,
प्रेरित,
prophet,
नबी,
evangelist,
सुसमाचार प्रचारक को शिक्षा देने.
We cannot appoint any of them.
हम किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते. मसीह केवल उन्हें नियुक्त
करता है. I cannot make myself apostle, prophet,
मैं अपने आप को प्रेरित या नबी या सुसमाचार प्रचारक नहीं कर सकता.
Pastor,
और जब वो पास्टर के बारे में आता है,
people think I can become a pastor.
और वो उन्हें लगता है कि लोगों को लगता है मैं एक पास्टर बन सकता हूँ.
I can go to Bible school, get a degree and become a pastor.
मैं बाइबल स्कूल में जाके डिग्री पाकर मैं पास्टर बन सकता हूँ.
It is as stupid as thinking I can make myself an apostle.
और ये इतना ही मूर्ख बात है जैसे हम सोचे कि मैं एक अपने आप को प्रेरित बना सकता
हूँ. Or somebody else can lay hands on you and say you're a pastor.
और कोई आपके ऊपर हाथ रखे कि आप पास्टर हैं.
Can he put his hands on you and make you an apostle?
और क्या किसी पर हाथ रखे आप प्रेरित बना सकते हैं?
No.
नहीं.
These are very clear. Christ has put these people as gifts in the church.
और ये बहुत ही साफ तरीके से लिखा है कि मसीह ने ये वरदान कलीसिया में दिए हैं.
So none of the early apostles tried to make people into apostles or pastors.
और पहले की किसी भी प्रेरित ने किसी ने किसी को भी इस तरह प्रेरित या सुसमाचार प्रचारक बनाने की कोशिश
नहीं की. Or a teacher or a pastor.
या प्रेरित या वचन के शिक्षा देने वाले.
The Lord has to gift them.
परमेश्वर उनको वरदान देने थे.
What we can do is,
हम क्या कर सकते हैं?
Appoint leaders in the church, call them elders.
हम कलीसिया के अंदर अगुओं को नियुक्त कर सकते हैं.
Minimum 2.
और 2.
Because it's a body.
कम से कम 2 क्योंकि वो एक देह है.
2 by 2.
और 2 2.
Like the Holy Spirit said in Acts 13, separate Barnabas and Saul.
जैसे प्रेरितों के काम 13 के अंदर पवित्र आत्मा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो.
In the Old Testament, it was not like that.
और पुराने नियम में ऐसा नहीं था.
One Elijah.
और एक
one
ही
Elisha,
और एक ही एलिशा,
one John the Baptist,
एक ही यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला,
2 by 2,
नए नियम में 2
minimum
और 2 और कम से कम 2
है, maybe 3, maybe 4,
और 3 और 4 हो सकते हैं.
So some churches, big church, you need 3-4.
और बड़ी कलीसिया के अंदर 3 या 4 जरूरी है.
Pastor, nobody can appoint.
पास्टर है, उसकी नियुक्ति कोई नहीं कर सकता.
So God gives these specific gifts to people.
और परमेश्वरी है जो लोगों को ये खास वरदान देते हैं.
But like so many things have been changed by Christianity.
और बहुत सारी चीजें मसीहत में बदली है.
Many people know that praying to Mary is wrong.
और वो जानते हैं कि मरियम से प्रार्थना करना गलत है.
Infant baptism is wrong.
बच्चों का बपतिस्मा देना गलत है.
Why?
क्यों?
Because not in scripture.
क्योंकि वचन में नहीं.
But they don't see that appointing pastors is also wrong because that's also not in scripture.
और ये नहीं देखते वचन में ये भी नहीं कि पास्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते.
If you can accept that, then you can also start praying to Mary.
अगर आप ये ग्रहण कर सकते हैं तो फिर आप मरियम से प्रार्थना करना भी.
If you can change one thing, you can change the others also.
आप अगर एक चीज बदल सकते हैं तो दूसरी बात भी बदल दीजिए.
There was a great man of God called Andrew Murray.
और एंड्रू मुरे करके एक प्रभु के महान दास थे.
Some wonderful books.
बहुत अद्भुत पुस्तकें लिखी.
He wrote a big article that infant baptism is the correct thing.
और उसने लिखा कि जो बच्चों का बपतिस्मा है वो सही है.
It is on the internet. I've read it.
और ये इंटरनेट पर है.
And you know what he said?
उसने क्या कहा?
He said it's not in the Bible.
वो बाइबल में नहीं है
बट द चर्च हैज एक्सेप्टेड इट फॉर सो मेनी इयर्स सो इट इज करेक्ट
और कलीसिया ने बहुत सालों से इसको अपनाया है इसलिए वो सही है
I was shocked. Andrew Murray, who has written such good books, has writes this.
और मैंने ये चीज को पढ़कर बहुत ही मुझे शॉक लगा कि ये एंड्रू मुरे ने इस प्रकार जो पुस्तकें लिखते हैं कहता है.
But he didn't change my view.
और मेरे उसने मेरे विचार को नहीं बदला.
Because of one reason.
एक कारण से.
I don't get my doctrine from Andrew Murray. I get it from the Bible.
और मेरे सिद्धांत एंड्रू मुरे से नहीं लेकिन वचन से आते हैं.
So make that your principle. Whatever great man of God says something. If it's not in the Bible, don't accept it.
और आपका ये सिद्धांत बना ले कि कितना भी महान व्यक्ति कोई भी सिद्धांत अगर वो वचन में नहीं तो उसे सिद्धांत ना बनाए।
To the Holy Spirit.
और यही पवित्र आत्मा के बारे में लागू होता है।
When you are born again,
और जब आपका नया जन्म होता है,
and you say, Lord Jesus, come into my heart.
और आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे मन में आ।
Like many of you have said, like I said 58 years ago.
और 58 साल जैसे आपने कहा होगा, वैसे मैंने भी कहा।
Turned my life around completely.
उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
Many people say today there are some preachers.
और बहुत सारे प्रचार आज ऐसा कहते हैं।
Nowhere in the Bible it says receive Jesus into your heart.
कहीं पर भी वचन में नहीं लिखा कि हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए।
I say yes, it does.
और मैं कहता हूँ हाँ ऐसा कहा है।
John chapter 1.
यूहन्ना एक अध्याय।
Verse 12.
12 वचन।
As many as received him, to them he gave the authority to be the children of God.
और जितने ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिया।
It happened to me.
मेरे साथ हुआ।
I received him and I became a child of God.
मैंने उसको अपनाया और मैं यीशु परमेश्वर का पुत्र बन गया।
So how can you say it's wrong to receive him?
और कैसे आप कह सकते हैं गलत है हृदय में उसका स्वीकार करना?
See, people who don't know the Bible, they preach all types of things.
और जो वचन को नहीं जानते ऐसे लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं।
But they say the early Christians always told people to receive the Spirit.
लेकिन पहले जो शताब्दी में लोग जो थे वो हमेशा पवित्र आत्मा के प्राप्ति के लिए प्राप्त
करते थे। Here is the principle of Bible study.
और यह बाइबल अध्ययन का एक सिद्धांत यहाँ है
which I wanted to mention in the last time session also.
और जो अंतिम सेशन में भी आपसे मैं बता रहा था
Never take a doctrine from the acts of the apostles.
और कोई भी सिद्धांत प्रेरितों के काम की पुस्तक से ना ले
Because it is not a doctrinal book, it's a historical book.
और वो एक सिद्धांत का बुक नहीं है ये पुस्तक नहीं है लेकिन वो एक इतिहास का पुस्तक है
Isn't it inspired by the Holy Spirit?
और क्या ये पवित्र आत्मा से प्रेरित है
Yes.
हाँ
And the Holy Spirit is only telling what people said or people did.
और पवित्र आत्मा जो लोगों ने कहा और किया उसके बारे में बताता है.
Do you know there's a verse in the Bible which says there is no God?
और वचन में ऐसा लिखा है कि आपको पता है कि जहाँ लिखा है कोई परमेश्वर नहीं है.
Have you read that?
क्या आपने पढ़ा है?
Have you read a verse in the Bible there is no God?
कैसा वचन पढ़ा है कि कोई परमेश्वर नहीं है?
Inspired by the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा से लिखा गया है.
I'll show you.
मैं आपको बताना चाहता
हूँ. Psalm 14 verse 1.
भजन संहिता 14:1
It's only half of the verse.
और ये आधा ही वचन है
There is no God.
कोई परमेश्वर है ही नहीं
But that's not the full verse.
लेकिन ये पूरा वचन नहीं है
The full verse is the fool has said in his heart there is no God.
लेकिन पूरा वचन है मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है
The fool says it only in his heart.
और मूर्ख अपने मन में ही कहता है
Bigger fools say to their mouth also.
और जो बड़े मूर्ख होते हैं वो अपने मुख से भी बोलते हैं
So if you take a statement But you say that's inspired by the Holy Spirit.
लेकिन आप कहेंगे कि तो पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन है।
Yeah, the Holy Spirit is saying what somebody else said or did.
और पवित्र आत्मा वो कह रहा है जिसने किसी और ने कहा और किया।
So, Acts of the Apostles is inspired by the Holy Spirit.
और प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पुस्तक है।
But he's not asking you to imitate it.
लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप उसका अनुसरण करें।
In Acts 15, you read that Paul and Barnabas had a fight with each other.
और प्रेरित 15 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और बरनबास के बीच में झगड़ा हुआ।
Who wrote that?
और किसने ये लिखा
Holy Spirit.
पवित्र आत्मा ने
Does it mean you also should fight with other believers?
और क्या इसका मतलब है आप और विश्वासी के साथ झगड़ा करें नहीं
So don't get a doctrine from Acts of the Apostles.
और प्रेरितों के काम की पुस्तक से सिद्धांत न ले
For example,
उदाहरण के रूप में
nobody gets this doctrine from Acts of the Apostles.
और प्रेरितों के काम से ये कोई सिद्धांत नहीं लेता
you know, we go to pick out things which we like and drop out things we don't like.
और हम ऐसे होते जो हमें चीजें पसंद है उसको हम लेते हैं और बाकी की चीजें छोड़ देते हैं
In the early days,
पहले के दिन में
Acts 2:44
प्रेरित 2:44
All believers had everything in common
और सारे जो विश्वासी हैं उनकी सारी वस्तुएं साझे की होती
थी and they sold their possessions and shared them with all
और सारी संपत्ति बेचकर वो आवश्यकता होती थी बांट देते थे
Have you done that
क्या आपने ऐसा किया है
Have you sold all your possessions and shared it with other believers?
और आपने अपनी संपत्ति सारी बेचकर विश्वासी को क्या दी है?
Have you sold your house and gone to live in a rented house?
और क्या अपना घर अपना बेचकर कहीं भाड़े के मकान में गए हैं?
They sold their property.
अपनी संपत्ति बेच दी उन्होंने
यहाँ. And possessions.
और सब कुछ अपना सामान बेच दिया.
And shared them with everybody, all the other believers.
और विश्वासी के साथ बांट दिया.
If anybody had a need.
और जिनकी आवश्यकताएं थी.
And they had everything in common.
और सब कुछ साझे का था.
That means it's not yours or mine. Everything is anybody's.
और इसका मतलब आपका भी नहीं, मेरा नहीं, हम सबों का है.
Which church practices that?
और कौन सी कलीसिया इस प्रकार ये सिखा ये
आपका? But it's in Acts chapter 2.
लेकिन प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है.
What does that teach us?
ये क्या सिखाता है?
This is history.
ये इतिहास है.
This is not a doctrine.
ये सिद्धांत नहीं है.
If this is a doctrine, then we must all practice it.
अगर ये सिद्धांत होता तो हम सबको इसका पालन करना पड़ता.
Jesus said, if you love me, keep my commandments.
यीशु ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा का पालन करो.
I'm just trying to show you get into so many wrong doctrines when you take historical sections and make them teaching.
अगर आप इतिहास के विभाग से अगर कोई चीजें आप अपना सिद्धांत बनाते तो आप गलत शिक्षा को दे रहे हैं.
So the same thing, you can't go to Acts 2:4 and say they all spoke in tongues.
और दूसरे प्रेरितों के काम 2:4 के अंदर जैसा लिखा है कि सारे लोगों ने अन्य भाषा में बात की, इसका मतलब नहीं. So the
Pentecost all speak in tongues, all must speak in tongues.
और पेंटिकोस्ट कहता है कि हर एक व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करना है. और प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है.
I tell them Acts 2:44, you must sell everything and have everything in common in your church.
कहना चाहता हूं तो प्रेरितों 2:44 के अंदर सब कुछ बेच के सब कुछ साझे का रखो.
No, not that.
नहीं, वो नहीं कर सकते.
Why not?
क्यों नहीं कर सकते?
Because speaking in tongues, you can just babble something and say it is tongues.
और अन्य भाषा में बोलना कुछ हम बबड़ते हैं और वो हो जाता है.
That's what happens in most cases.
और सारे ज्यादातर इसी तरह से होता है.
So much pressure is put on people to speak in tongues, they babble something and call it tongues.
और इतना दबाव कुछ भी बोलने के लिए लोगों पर दिया जाता है, कुछ भी वो बोल देते जो भी मुंह में आया.
Don't be deceived.
और धोखा न खाए.
95% of the tongues I have heard in Pentecostal churches is all fake.
और 95% मैंने पिंतिकोस में सुना है लोग जो बोलते हैं वो सब कुछ नकली है.
I know when God gave me the gift of tongues.
और मुझे भी परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया.
43 years ago.
और 43 साल पहले.
It is a language.
और वो एक भाषा है.
Supposing I stand up here and say like this.
और मैं यहाँ पर खड़ा होकर ऐसा कुछ कहूँ.
You don't have to translate it. बाबा बाबा शाबा 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 शंडरा.
अगर ऐसा कुछ मैं कहूँ यहाँ.
What do you think?
तो आप क्या सोचेंगे?
Am I speaking a language or just talking some rubbish?
और क्या मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ या ऐसे ही कुछ व्यर्थ में बोल रहा हूँ?
But that is what I've heard in every Pentecostal church.
और यही मैंने हर एक पेंटिकोस्टल चर्च में सुना है.
3 or 4 syllables.
और 3 or 4 शब्द ही है.
बा शा रा.
बा शा या रा.
बाबा शाबा बाबा शंडारा.
और उसी के बीच में उसे जोड़ते रहते हैं.
बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड.
आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं. और वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं.
And there are stupid people who believe it.
और मूर्ख लोग इस पर विश्वास करते हैं.
Supposing I say this, I'm speaking Chinese now.
और मैं आपको कहूं कि मैं चाइनीज में बोल रहा हूं.
I know Chinese.
मुझे चाइनीज पता है.
बा 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 शंडारा.
और इस तरह से मैं कुछ बोलूं.
You have to be stupid to believe it's a language.
और आप मूर्ख होंगे इस भाषा के ऊपर विश्वास करने के लिए.
Even if you don't know Chinese,
अगर आपको चाइनीज नहीं भी पता,
and you don't know Russian,
आपको रशियन नहीं पता,
you can make out if somebody is speaking a language or just babbling some syllables.
आप उसको पहचान पाते कोई भाषा बोल रहे हैं कुछ शब्द को आगे पीछे कर रहा
है. Tongues is a language.
और अन्य भाषा जो एक भाषा है.
Paul said, I speak in tongues more than all of you.
पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में आपसे बढ़कर बोलता
हूं. But I don't use it in public, I use it in private.
लेकिन मैं जाहिर में नहीं लेकिन व्यक्तिगत तौर से बोलता हूं.
When I don't know what to pray,
जब मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना
करना है, bed,
और मैं बिस्तर में पड़ा हूँ,
I pray in tongues,
मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता
हूँ, and I keep on praying,
और मैं प्रार्थना करते रहता
हूँ, I can keep on going,
और मैं आगे बढ़ता हूँ,
I can keep on praying,
और मैं प्रार्थना करते रहता
हूँ, but it's a private gift,
लेकिन ये एक निजी, एक व्यक्तिगत वरदान है,
man speaks in a tongue, he prays to God,
और जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है.
So that's the first thing I want to say of wrong teaching about the Holy Spirit.
और ये सबसे पहली शिक्षा जो गलत शिक्षा है पवित्र आत्मा के बारे में.
If in a church everybody starts praying in tongues,
अगर कलीसिया में हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लग जाए,
like you see in so many charismatic groups,
और बहुत सारे ऐसे पंथ के अंदर हम देखते हैं,
what should you call that church?
तो उसको वो कलीसिया को आप क्या कहेंगे?
Don't take Zach Poonen's opinion.
और Zach Poonen का मत ले.
Take the opinion of the Holy Spirit in Acts 1 Corinthians 14.
और पहले कुरिन्थी 14 के अंदर जो लिखा है उसका मत ले.
What the Holy Spirit says.
पवित्र आत्मा क्या
कहती है? Verse 23.
वचन.
If the whole church assembles together and all speak in tongues, they will say you're mad.
यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो सबके अन्य भाषा बोले तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे.
So I will call that mad church.
तो मैं उस कलीसिया को पागल चर्च कहूंगा.
That's not me.
मैं नहीं कह रहा.
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा यहाँ कह
रहा है. I go to a church, everybody speaking in tongues.
और हर कलीसिया में हर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है.
I don't call it charismatic Pentecostal.
और मैं उसको कोई पंतिकोस का पंथ नहीं कहूंगा.
That is what man calls it.
लेकिन वो मनुष्य ऐसा कहता है. The Holy Spirit
calls it mad church.
पवित्र आत्मा उसको एक पागल कलीसिया कहता है.
I will quote it what the Holy Spirit says, mad church.
और मैं पवित्र आत्मा जो कहता है वो कहूंगा पागल कलीसिया.
What about Paul who wrote this? Are you against the gift of tongues?
और क्या पॉलुस लिखा तो क्या अन्य भाषा के विरोध में वो है?
Verse 18, I speak in tongues more than all of you.
18 वचन में कहता है आपसे सबसे बढ़कर मैं अन्य भाषा में बोलता
हूँ. But I will not use that in the church.
लेकिन मैं कलीसिया में इस्तेमाल नहीं करता.
In the church, 19 verse 19, I'll speak 5 words in a known language, then 10,000 words in an unknown tongue.
और वो 19 वचन में कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से मुझे पांच अच्छे बुद्धि से पांच ही बातें कहूँगा.
I say that.
और मैं ये कहता हूँ.
I speak in tongues more than others.
और मैं औरों से अन्य
भाषा में स्पीक 5 वर्ड्स इन इंग्लिश मोर देन 10,000 वर्ड्स इन अ टंग.
लेकिन कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 शब्दों से ज्यादा इंग्लिश भाषा के पांच शब्द बोलना पसंद करूंगा.
Because verse 2, when I speak in a tongue, I'm not speaking to men, but I'm speaking to God.
क्योंकि दो वचन में मैं अन्य भाषा में जब बात करता हूं तब मैं मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता हूं. ये वचन है.
So what happens when we are born again?
और क्या होता है जब हमारा नया जन्म होता है?
Jesus is in heaven.
और यीशु मसीह
has not come back to the earth.
वो धरती पर नहीं है.
How did he come into your heart then?
वो कैसे आपके हृदय में कैसे वो आता है?
Through his spirit.
उसकी आत्मा के द्वारा.
Through the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा के द्वारा.
The spirit of Christ comes in.
मसीह का आत्मा हमारे अंदर आता
है. I say, Lord Jesus, come into my heart.
और जब मैं कहता हूँ यीशु मेरे हृदय में
आए. It's the Holy Spirit who comes in, then I'm born again.
और तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आता है और मेरा नया जन्म होता है.
Christ is in heaven.
और मसीह स्वर्ग में है.
So He's not worried about language.
और वो भाषा के बारे में नहीं चिंतित.
People say, why don't you ask people to receive the Spirit?
और आप लोग कहते हैं कि आप लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो आत्मा ग्रहण करें?
If I go around in the villages of India and say, receive the Spirit.
और मैं अगर लोगों में गांव में जाकर कहूं भारत के कि आप आत्मा ग्रहण करें?
They have already received so many evil spirits.
और उनके पास पहले ही बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं.
No, I have to say Jesus Christ.
मुझे यीशु मसीह कहना है.
The Spirit of Christ.
मसीह
का आत्मा. So that is why I say, receive Jesus Christ into your heart.
और इसलिए कहना मैं कहता हूं कि
The Holy Spirit comes in.
और मसीह का आत्मा आता है और वो पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है.
I'm trying to clarify all the hazy things in your mind.
और ऐसी जो अव्यवस्थित चीजें उसको मैं साफ करना चाहता हूँ.
Now read Romans chapter 8.
रोमियो 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
Verse 9 and you'll see what I'm saying.
8 अध्याय 9 वचन.
If anyone does not have the Spirit of Christ, he doesn't even belong to him.
यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं.
If you don't have the Spirit of Christ, you don't belong to him, you're not born again.
अगर मसीह का आत्मा नहीं तो आप परमेश्वर के नहीं, आप नया जन्म नहीं
पाते. What do you learn from that verse?
इस वचन से क्या सीखते हैं?
Everyone who is really born again has the Holy Spirit.
इसका मतलब जिसका सही में नया जन्म हुआ उसके अंदर पवित्र आत्मा है.
If you don't have the Holy Spirit, you're not even born again.
अगर पवित्र आत्मा नहीं तो आपका नया जन्म नहीं हुआ.
So when did the Holy Spirit come into you?
और कब पवित्र आत्मा आता है?
And you said, Lord Jesus, come into my heart.
और जब आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ.
Christ was there, he didn't come.
और यीशु मसीह स्वर्ग में है वो नहीं आया.
His spirit came in.
उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आता है.
Father, Son, and Holy Spirit are one, so you can say Christ came in.
और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम कहते हैं यीशु मसीह मुझ में आया.
You can say Holy Spirit came in.
और मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया.
You can say God came in.
और आप कहते हैं परमेश्वर मुझ में आया.
So that is what happens.
और यही होता है.
I never tell people after you're born again receive the Spirit.
और मैं लोगों से नहीं कहता नया जन्म प्राप्त करने के बाद कि आप पवित्र आत्मा पाए.
I say if you're not receive the Spirit you're not even born again.
और मैं कहता हूं अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आप नया जन्म नहीं पाए.
Romans 8:9.
और रोमियो 8:9 में जिस प्रकार लिखा है.
You got the Holy Spirit.
अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया,
then you're not even belong to him.
तो आप उसके जन नहीं हैं.
Then you're a child of the devil.
आप शैतान के बच्चे हैं.
You need to be born again.
आपका नया जन्म होना है.
This is scripture.
ये वचन है.
Then what is the baptism in the Holy Spirit?
और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होना तब क्या है?
See, baptism is a Greek word. That's a fundamental problem that most people don't understand.
और बपतिस्मा मूलभूत रूप से ये एक यूनानी एक शब्द है.
You know, people acquired that language into English.
और उस यूनानी शब्द को इंग्लिश भाषा के अंदर ले लिया गया है.
Take this word, dobi.
Dobi आप एक शब्द को ले.
Dobi is a Hindi word.
Dobi.
Indian word.
Hindi.
The washerman is called a dobi.
Dobi जो है एक हिंदी शब्द है.
One who washes clothes.
जो कपड़े धोता है.
But in the English dictionary it is there.
लेकिन वो इंग्लिश डिक्शनरी में है.
How did it come into the English dictionary?
वो कैसे वहां आया?
Because the English people ruled in India and took that word and put it in the dictionary.
और वो अंग्रेजी लोगों ने यहाँ लिखा और वो डिक्शनरी में वहां लेकर गए.
Or Mem Sahib, Sahib. English people know the meaning of that.
और Mem Sahib जो है वो हिंदी शब्द है लेकिन अंग्रेजी लोग भी उसका अर्थ जानते हैं.
They took this and took it there.
और वो शब्द यहाँ से वो वहाँ लेकर गए.
Babu Sahib.
और Babu Sahib.
These are all words. So like that in Greek they brought one word into English called baptism.
और ग्रीक के अंदर भी एक baptism नाम का है शब्द है जिसको इंग्लिश के अंदर ले लिया गया.
What does it mean in the Greek?
और यूनानी में उसका क्या मतलब होता है?
If you want to know the meaning of dobi, go to India and find out the meaning.
और अगर आपको धोबी का मतलब नहीं पता भारत में जाकर उसका अर्थ.
So you want to know the baptism, you go to the Greek language.
अगर बपतिस्मा का अर्थ नहीं पता, आप ग्रीक भाषा में जाइए.
Baptism mean the Greek, they said immersion. That is the meaning of baptism.
और ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है कि उसको डुबाना, उसका मतलब बपतिस्मा.
You put your hand into a bucket of water, that's called baptizing your hand.
और अगर अपना हाथ पूरे बकेट में आप डालते, उसका मतलब आपने अपने हाथ का बपतिस्मा किया.
So we know water baptism. You put a person into the water and take him out.
और पानी में बपतिस्मा,
Jesus name.
डुबाते हैं और यीशु के नाम से उसको.
Father, Son, and Holy Spirit.
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से.
That is baptism in water.
वो जल का बपतिस्मा है.
There are two ways you can be immersed.
और दो प्रकार से आप डूब सकते हैं.
One is you put him in water.
पहला आप पानी में डुबाए उसको.
The other is you stand under the mighty waterfall.
और एक बड़ा एक सोता जल का है, उसके नीचे आप खड़े हो जाएं.
There are places in India where there's a mighty waterfall.
और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे एक सोते होते हैं पानी के.
If you stand under that, you'll also be baptized.
और उस झरने के नीचे है तब भी आपका बपतिस्मा होता है.
Completely immersed in the water.
और उससे पूरी तरह से पानी में डूब गए.
Baptism in the Holy Spirit is like that.
और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा उस प्रकार है.
The Holy Spirit comes and completely immerses you.
और पवित्र आत्मा आप पर आकर पूरी तरह से आपको डुबा देता है.
Or the fullness of the Holy Spirit, same thing.
और यही एक पवित्र आत्मा की भरपूरी उसको उसके समान है.
You can receive the Holy Spirit.
आप पवित्र आत्मा को प्राप्त
and you may not be baptized in the Holy Spirit.
और आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो
you
सकते.
May not be filled with the Holy Spirit.
आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो
I
सकते.
I want to make that so clear to you so that you can understand.
और आपको साफ रीति से मैं कहना है ताकि आप समझ सके.
Our heart is like a home.
हमारा हृदय एक घर के समान है.
Let's assume that's like a house with 10 rooms.
हमारा हृदय एक घर के समान जिसमें 3 कमरे हैं, 10 कमरे हैं.
Dark because of sin.
और पाप के कारण सब में अंधकार है.
And one room we are particularly disturbed by is the guilt room.
और एक जो एक कमरा जो है उसके अंदर दोष की भावना है.
I'm guilty, 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 guilty.
और दोष की भावना हमारे अंदर
दोष है. Because I've committed so many sins.
क्योंकि इसलिए इतने ज़्यादा पाप किए हैं.
And I say, Lord Jesus, please come and bring some light into this room.
और मैं प्रभु यीशु से प्रभु कुछ प्रकाश आपका उस कमरे में आप लेकर आए.
Deliver me from the darkness of guilt.
और वो जो दोष का जो अंधकार उससे मुझे छुटकारा दीजिए.
Jesus comes in.
और यीशु वहाँ आता है.
In other words, the Holy Spirit comes in.
पवित्र आत्मा उसमें आता है.
Into the guilt room.
और वो जो दोष का जो कमरा है उसमें.
Because I wanted him.
क्योंकि मैं चाहता हूं
उसमें आऊं.
मैं अपने हृदय को खोलता हूं, उसे आमंत्रित करता हूं
आने के लिए.
मेरे सारे पाप क्षमा हो गए.
Blood of Jesus has cleansed me.
और यीशु के लहू ने मुझे पूरी तरह से धो दिया.
I will not even remember your sins anymore.
और वो कहते हैं कोई भी पाप मैं स्मरण नहीं करूंगा.
And like we sing, oh happy day when my night was turned into day.
और जैसे हम गीत गाते बहुत ही खुशी का दिन जब वो अंधकार का दिन मेरा उजियाला.
Light has come in.
और वो उजियाला आ गया है.
Now in the beginning you look at this 10 room house.
अगर ये 10 कमरों का आप जब घर देते हैं शुरुआत में अंधकार था.
Now light has come into one room.
एक कमरे में अभी उजियाला आ गया है.
Has light come into that house?
तो आप कहेंगे पूरे घर में उजियाला है.
Yes.
हम वो कमरे में उजियाला है हाँ कहेंगे.
But is the house filled with light?
लेकिन क्या कहेंगे पूरे घर में वो उजियाला है नहीं.
There are 9 rooms that are still dark.
और 9 कमरे अब भी हैं जिनमें अंधकार है.
If you want all the house to be filled with light.
अगर आप पूरा घर उजियाले से भर जाए ये चाहते हैं यदि.
Not just receive the light.
लेकिन उस अंदर केवल उजियाले को प्राप्त करें उतना ही नहीं.
One room received it.
एक कमरे में ही मिले उतना ही नहीं.
To be filled with light, all the rooms must be open.
और उजियाले से अगर भरना है तो सारे कमरों में उजियाला प्रकाश आना है.
Will not come into a room where you don't invite him.
परमेश्वर ऐसे कोई भी कमरे में नहीं है जहां उसे आप आमंत्रित नहीं करेंगे.
He says, I stand at the door and knock. If you open the door, I'll come in.
वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ.
Revelation 3:20.
और प्रकाशित वाक्य 3:20.
So you open the door to guilt because we all want to get rid of guilt.
और आपने उस दोष के कमरे का दरवाजा खोला क्योंकि आप उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं.
But there are some other rooms you don't want to open.
लेकिन ऐसे और भी कमरे हैं जिसका दरवाजा आप नहीं खोलना चाहते.
I want to come into your television room.
और परमेश्वर वहां खटखटाकर आपके टीवी के रूम पर कहना चाहते हैं मैं अंदर आना चाहता
हूं. I want to see what all you're watching on television.
और मैं आप क्या-क्या देखते हैं टीवी पर वो देखना चाहता हूं.
Will you let me come in and control everything there?
और क्या आप मुझे अनुमति देंगे और नियंत्रण करने देंगे आप जो कुछ वहाँ देख रहे हैं?
Your smartphone is also in this television room.
आपके जो स्मार्टफोन है उसमें भी वो टेलीविजन रूम में है.
Computer is also there.
वहाँ आपका कंप्यूटर है.
Will you let me come and control all that?
क्या आप मुझे अनुमति देंगे उसका सारा नियंत्रण करने के लिए?
I will decide what program you watch on television.
और मैं यहाँ पे चुनाव करूंगा कौन सा टीवी का प्रोग्राम आपको देखना है.
Whether you are permitted to go that site or that television channel.
मैं आपको अनुमति दूंगा उस चैनल या साइट पर आपको जाना है या नहीं.
This computer, this site, you check with me before you go to that site.
उस साइट पर कंप्यूटर में जाने से पहले आप मुझसे अनुमति लेंगे.
Or before you click to some place on your smartphone.
स्मार्टफोन में कुछ दबाने से पहले आप मेरी अनुमति लेंगे.
Will you let me come into that room and control it?
और क्या उस कमरे में आकर मुझे नियंत्रण लेने देंगे?
And you know what you're saying.
और आप जानते क्या कहेंगे?
Lord,
प्रभु,
there are some sites you may not like.
और कुछ ऐसी साइट है प्रभु शायद आपको पसंद नहीं आएंगी.
But I have to go. We need some entertainment in this world.
और कुछ मनोरंजन इस संसार में हमको चाहिए, हमें उसकी जरूरत है.
So you have shut the door.
वो दरवाजा इस कमरे का दरवाजा आपने बंद रखा है.
And you say, "Oh God, fill me with the Holy Spirit."
और फिर आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे.
The Holy Spirit says, "How can I do? You shut the door from the inside."
और पवित्र आत्मा कैसे मैं भर सकता हूँ? अंदर से आपने कमरा बंद कर लिया है.
There are lots of people who are praying and praying and praying, and 100 years they will not be filled with the Holy Spirit.
और बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे करे, लेकिन 100 साल तक वो पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे.
Or another room.
और दूसरा कमरा.
Lord says, "Can I come into your library?"
और कि मैं आपके पुस्तकालय में आ सकता हूँ?
To see what all books you read, what all magazines you read.
और किस प्रकार की पुस्तकें के मैगज़ीन आप पढ़ते हैं?
Like, will you agree with me if I tell you to throw away some books and throw away some magazines?
और क्या आप मुझसे सहमत होंगे कुछ मैगज़ीन या पुस्तक फेंक देने के लिए?
You say no. There are some magazines I like to read.
और आप कहेंगे मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने, मैगज़ीन पढ़ना अच्छा लगता है.
Lord says, "Okay, okay, I won't disturb you."
और प्रभु कहेगा मैं आपको disturb नहीं करूँगा.
Keep the door locked.
और उसको आप बंद रखे उस दरवाजे को.
He won't come in. The Holy Spirit will not come in.
और पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएगा.
He will not force his way into a room that you keep locked.
और जिस कमरे का दरवाजा बंद रखा है दबाव के साथ वो अंदर नहीं आएगा.
And the Lord says, "Now I want to come to your financial room where you handle your money and accounts and all that."
और फिर परमेश्वर कहता है कि आपके जो आर्थिक जो कमरा जो है जहां पैसों के साथ आप व्यवहार करते हो उसमें उस कमरे में आना चाहता
हूं. I want to see how you're earning your money.
और मैं चाहता हूं देखना कि आप कैसे अपना पैसा कमाते हैं.
Righteously, uprightly, without cheating anyone.
किसी को धोखा दिए बिना क्या धार्मिकता से पैसा कमाते हैं?
You say, "No, don't come there, Lord. In this world, it's very difficult to be totally righteous."
और प्रभु उस कमरे में मत आना, इस संसार के अंदर ऐसी धार्मिकता से हम पैसे नहीं कमा सकते.
The Lord said, "Do you deal with black money?"
क्या आप जो काला धन है उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं?
When you buy and sell, are you dealing with black money?
और काला धन के साथ आप लेन देन करते हैं?
You say, "Lord, everybody does it."
प्रभु सबको ही करता है.
The Lord will say, "Everybody goes to hell. You want to go there?"
So प्रभु कहेगा हर कोई नरक में जाता है, क्या तुम जाना चाहते हो फिर?
Don't say everybody does it.
ये न कहे हर कोई करता है.
Everybody goes to hell.
हर कोई फिर नरक में भी जाता है.
So we keep him out.
हम उसको बाहर रखते हैं.
How are you spending your money?
अपना पैसा आप कैसा आप खर्च कर रहे हैं?
Lord, I'm so happy. I'm in a church where they never take an offering.
प्रभु मैं बहुत खुश ऐसे कलीसिया में जाके जहाँ बिल्कुल पैसा नहीं मांगते.
I used to be in a church where I had to give so much. Now I have to give nothing.
प्रभु पहले कलीसिया में तो पैसा देना पड़ता, यहाँ कुछ नहीं देना पड़ता.
And I have daughters, and I don't have to pay any dowry for any of my daughters. This is a wonderful church.
और ये बहुत अच्छा कलीसिया है, मेरी बच्ची के लिए कोई भी दहेज देना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी कलीसिया है.
So I don't even give my daughters their rightful share of the property.
और मेरी बच्चियों को अच्छा एक विरासत भी मिलता है बच्चों के साथ.
You know, some people say Brother Zach is against dowry.
और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ब्रदर जैक जो है वो दहेज के विरोध
में. 100%.
और 100%.
I never took dowry for my when I got married. I never allowed any dowry for my 4 sons.
और मैंने जब विवाह किया तब मैंने दहेज नहीं और मेरे बच्चों के लिए भी अनुमति नहीं दूंगा दहेज लेने की.
But I teach people.
और मैं ये सिखाता हूँ.
You must share your inheritance with your daughters also, not only with your sons.
अपने बेटों के साथ नहीं लेकिन बेटी के साथ भी अपनी संपत्ति का बांटे.
If I had a daughter, I would share with equal inheritance with her or whatever I have with as with my sons.
अगर मेरी बेटी होती तो मेरे बेटों को जितना भाग देता हूँ उतना ही मेरी संपत्ति का भाग बेटी को भी दूंगा.
But I will not buy a husband for her with dowry.
लेकिन मैं दहेज के साथ उसके लिए एक लड़की को नहीं खरीदूंगा.
So some people like that.
कुछ लोगों को ये पसंद है.
They give nothing to the Lord.
वो परमेश्वर को कुछ नहीं देना चाहते.
The Lord says, "Can you let me come and see how you receive money and how you give?"
और क्या परमेश्वर को आप अनुमति देंगे कैसे आप लेन-देन करते हैं पैसों का?
The Lord says, "No, you say no, Lord, don't come there."
और आप कहेंगे प्रभु इस कमरे में मत आ.
Can you let me come and decide what all people you should keep as your friends and what all people you should give up friendships?
और आप ये क्या उसको अनुमति देते कि कौन से मित्रों के साथ आपको रखना है, मित्रता नहीं रखना है?
So you see, there are many, many rooms we don't want the Holy Spirit to come.
और ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जहाँ हम पवित्र आत्मा को आने की अनुमति नहीं देते हैं.
What's use praying to be filled with the Holy Spirit?
तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या प्रार्थना करने का क्या फायदा?
I have been in where people mostly Pentecostal charismatic means they come, let's pray for the Holy Spirit.
और ऐसे पवित्र पेंटिकोस्टल लोकल में लोगों को जानता हूं जो कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना
करें. And they yell and scream and lift their hands and
और अपने हाथों को उठाकर चिल्लाए.
Get all emotionally excited.
और भावुक होकर चिल्लाए और इस तरह से करें.
And then some people babble something.
और कुछ ऐसे बबड़ते हैं कुछ लोग.
And people say, "Oh, you got it, brother."
और फिर लोग कहते हैं तुम्हें मिल गया.
Why that guy is watching pornography in his private life?
और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो अश्लील चीजें देख रहा है.
He's unrighteous in money areas.
और पैसों के बारे में वो अधर्मी है.
He's a miser. He's not generous.
और वो उदार नहीं, कंजूस है.
He watches all types of things on television.
और टीवी के अंदर हर चीज की वो चीजें देखता है.
And this pastor has fooled him that he's filled with the Holy Spirit.
और पास्टर ने उसको मूर्ख बनाया कि तुझे पवित्र आत्मा मिल गया.
I will not fool such people.
और मैं ऐसे लोगों को मूर्ख नहीं बनाऊंगा.
I will tell them straight.
मैं उनको साफ तौर से कहूंगा.
Rooms in your life you have not yielded to the Holy Spirit, you will never be filled with the Holy Spirit in 100 years.
और मैं उनसे कहूंगा ऐसे कमरे आपके जीवन में हैं जिसको आपने नहीं खोला है, 100 साल तक भी आप पवित्र आत्मा से नहीं.
You can keep on praying.
आप प्रार्थना कर सकते हैं.
If you want to fool yourself, go to some charismatic church, they will fool you.
अगर आपको मूर्ख बनना है, किसी और पंथ में जाकर वो आपको मूर्ख बनाएंगे,
you will babble something and you think you are filled with the Holy
और कुछ ऐसा बोलने के द्वारा वो आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे,
absolutely no change in your life.
आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा.
I don't want to fool you.
और मैं आपको मूर्ख बनाना नहीं चाहता.
I'll tell you which tongue I wanted.
और मैं आपको कहना चाहता हूँ कौन सी भाषा, कौन सा अन्य भाषा मैं चाहता हूँ.
मदर टंग.
और मेरी मातृभाषा.
I said, Lord, before you give me other tongues, help me to control my anger.
और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं अन्य भाषा मुझे मिले इससे पहले मुझे मेरी क्रोधित जो भाषा है उसके ऊपर मुझे नियंत्रण चाहिए.
And I'll tell you why.
क्यों?
Because it says in Acts chapter 2.
और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा
है. Before they spoke in tongues.
और अन्य भाषा में बोलने से पहले.
When they were filled with the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा से जब वो भरे गए.
It says in Acts 2 verse 3.
दूसरे अध्याय का तीसरा वचन.
Verse 4 is speaking in tongues.
चौथा वचन अन्य भाषा में बोलने के बारे में.
It says a tongue of fire came on top of their heads.
और आग सी जीभें फटती हुई उन पर आई.
I said that's what I want.
और मैं यही चाहता हूँ.
A tongue which is under the control of the fire of the Holy Spirit.
और ऐसी जीभ जो पवित्र आत्मा के अग्नि के नियंत्रण में है.
Formerly my tongue was with the fire of hell, like it says in James 3.
और पहले जो मेरी जीभ थी वो आग की जो अग्नि है उसके नियंत्रण में थी.
It says in James 3, your tongue is in the fire of hell.
याकूब के तीन अध्याय में इस प्रकार लिखा है.
How do I know it is the fire of hell?
और कैसे मैं जान सकता हूँ वो नरक की अग्नि के नियंत्रण में है?
Anger.
क्योंकि क्रोध है.
Get angry with my wife.
मेरे पत्नी के साथ क्रोधित होता हूँ.
Angry with people.
लोगों के साथ क्रोध करता हूँ.
Angry with porters in the railway station.
और रेलवे स्टेशन में मैं लोगों के साथ में क्रोध होता हूँ.
ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हु वांट मोर मनी.
और जो ज्यादा पैसा ऑटो रिक्शा वाला मांग उसके साथ में गुस्सा होता
हूँ. Anger in the office, anger in the home.
दफ्तर के अंदर, घर के अंदर गुस्सा.
Anger with neighbors.
और पड़ोसी के साथ गुस्सा.
Anger, anger, anger.
गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा.
And then at other times. Murmuring, something is wrong, grumbling.
और कुछ गलत होता है तो कुड़कुड़ाना होता है.
Grumbling against the boss.
और बॉस जो है उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाना.
Grumbling against the prime minister.
और प्राइम मिनिस्टर है उनके विरोध में कुड़कुड़ाना.
Always grumbling, something or the other.
और कुछ न कुछ चीजों के लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं.
I said, Lord, my tongue is on fire with hell.
और मेरी जो जिभ है वो जो नरक की अग्नि के नियंत्रण में है.
I want to get rid of that fire.
और उससे मैं छुटकारा पाना चाहता
हूं. I want the fire of heaven to control my tongue.
और मैं स्वर्ग की अग्नि के नियंत्रण में आना, मेरी जीभ को लाना चाहता हूं.
I will never speak a rude word to anybody.
और मैं किसी के साथ भी कठोर शब्द से बात नहीं करूंगा.
Everything I speak will be from love.
और जो भी बात करूंगा वो प्रेम के द्वारा होगा.
And everything I speak will be with humility.
और जो भी मैं बात करूंगा नम्रता के साथ होगा.
And I will not backbite. That is the fire of hell.
और मैं किसी के पीछे पीठ पीछे बात नहीं करूंगा, वो नरक की अग्नि.
Lord, I've done it.
और मैंने ऐसा किया
the
है.
fire of hell has controlled my tongue.
और नरक की अग्नि ने मुझे नियंत्रित
किया है. Give me this tongue of fire.
और ये अग्नि जो मुझे चाहिए.
That is when God filled me with the Holy Spirit.
और तब मुझे पवित्र आत्मा ने भरा.
And he gave me control over my tongue.
और उसने मुझे अपनी जो जीभ है उसके ऊपर नियंत्रण दिया.
Do you want it?
क्या आपको चाहिए?
Do you want unknown tongues or this tongue of fire?
आपका अन्य भाषा चाहिए या स्वर्ग की जो अग्नि है वो चाहिए?
I sought for the tongue of fire.
और मैंने जो स्वर्ग की जो अग्नि है उसको मैंने.
And I got Acts 2 verse 3 and verse 4.
और जो प्रेरितों के 2, 3 और 4 भी मुझे मिला.
I wanted only 3.
और मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए था.
Tongues was given like a bonus. You get your salary and the company gives you a bonus also.
और आपको वो बोनस के रूप में मिलता है. आपको जैसे वेतन तो मिलता है लेकिन बोनस उसके साथ मिलता है.
The salary I sought for was not, the gift I sought for was not unknown tongues.
और जो मैं जो मुझे जो दान चाहिए था वो अन्य भाषा का नहीं था.
The tongue of fire.
लेकिन जो अग्नि की जो जीभ है.
I'll tell you my brothers and sisters.
भाइयों बहनों क्यों मैं कहना चाहता
हूं. Seek for this tongue of fire.
और ये अग्नि की जो जीभ है उसे आप चाहे.
Because the Lord said to me.
और परमेश्वर ने मुझसे कहा.
If you let me control your tongue every day.
अगर आप मुझे अनुमति देंगे प्रतिदिन आपकी जीभ को नियंत्रण करने के लिए.
Whenever you are in the pulpit,
जब भी आप पुलपिट पे खड़े होते हैं.
I will give you my word for everybody, wherever you go.
और जहां कहीं आप जाएंगे हरेक के लिए मैं अपना वचन आपको दूंगा.
And I have experienced that.
और मैंने उसे अनुभव किया है.
But it depends on my giving my tongue to the Lord the rest of the day.
लेकिन वो आधारित है जब मैं और दिन मेरे अपनी जीभ को परमेश्वर को देता
हूं. I don't want an experience.
और मुझे केवल एक अनुभव नहीं चाहिए.
I want the real power of the Holy Spirit.
मुझे एक पवित्र आत्मा का सही सामर्थ्य चाहिए.
Power to put my sin to death.
और सामर्थ पाप को मृत्यु में लाने के लिए.
I must show you one more verse. Romans 8 verse Romans chapter 8.
रोमियो 8 अध्याय.
And verse 13.
और 13 वचन.
Middle. If by the Holy Spirit you put to death the deeds of the body, you will live.
और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे.
I said that's why I want the power of the Spirit.
और इसलिए मुझे आत्मा का सामर्थ्य चाहिए.
Control my tongue.
और मेरी जीभ को नियंत्रण करने के लिए.
And to put to death these. sinful things coming out of my body.
और जो मेरे शरीर से पापमय चीजें निकलती है उसको मारने के लिए.
Sinful looks coming out of my eyes.
और जो देखना मेरे आंखों से जो दिखाव निकलता है जो पापमय है उसको मैं मारना चाहता हूँ.
Sinful things I do with my hands.
और जो पापमय चीजें मेरे हाथों से करता हूँ.
Sinful places I go with my feet.
और मेरे अपने पैरों से जो पाप की जगह पर मैं जाता हूँ.
I want to put it to death through the Holy Spirit.
उन क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मारना चाहता
हूँ. I want to say everybody sitting here.
मैं कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है.
The power of the Holy Spirit for these things I just mentioned.
अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को इन चीजों के लिए जो मैंने अभी बताया उसके लिए पूछते हैं.
God may or may not give you the gift of speaking in tongues.
प्रभु शायद आपको अन्य भाषा का दान दे या न भी दे.
But He'll give you the tongue of fire.
लेकिन वो आपको अग्नि की जीव देगा.
And He'll give you power to put to death the deeds of the body.
और वो ऐसा सामर्थ्य देगा शरीर के कामों का मृत्यु में करने का.
And I don't conduct meetings for people to come and be prayed for the Holy Spirit.
और मैं ऐसी सभाओं का आयोजन नहीं करता लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए.
Because I don't see that in the New Testament. I don't do anything which is not in the New Testament.
और मैं नए नियम में भी उसे नहीं देता और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो नए नियम में नहीं है.
The day of Pentecost was the only time they prayed like that.
और पंतिकोस के एक दिन उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना
की. Because the Holy Spirit had not yet come to the earth.
और क्योंकि धरती पर पवित्र आत्मा नहीं आया था.
But after the Holy Spirit came to the earth on the day of Pentecost.
और पंतिकोस के दिन के बाद जब पवित्र आत्मा आ चुका था.
You never find people anywhere waiting for the Holy Spirit.
उसके बाद कहीं पर भी लोग इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा की बाट नहीं जोते.
No, he's already come.
वो आ चुका है.
Day of Pentecost, he had not come, so they were waiting for 10 days.
और वो पवित्र आत्मा का नहीं आया तब तक वो 10 दिन उसकी बाट जोड़ी.
Now you don't have to wait.
अभी आपको बाट नहीं जोना है.
Now the Holy Spirit is waiting for you to open all the doors.
अभी पवित्र आत्मा राह देखता है कि आप उस कमरे के दरवाजे को खोलें.
You think you are waiting for the Holy Spirit? He's actually waiting for you.
आप सोच रहे कि आप राह देख रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा आपकी राह देख रहा है.
So if you don't open the door, you keep on praying, be filled with the Holy Spirit, nothing will happen.
आप अगर कमरा नहीं खोलेंगे पवित्र आत्मा आपको नहीं भरेगा.
My wife received the gift of tongues in a room.
और मेरी पत्नी को एक कमरे के अंदर पवित्र आत्मा अन्य भाषा का मिला. कोई सभा में नहीं.
Praying with some other sister.
और जो बहनों के साथ प्रार्थना करते
हुए. I received the gift of tongues in my house.
और मुझे घर में बैठे हुए मुझे अन्य भाषा का
मिला. Many people in our church, in their home, they opened all the doors. Holy Spirit filled them.
और मैं बहुत ऐसे भाइयों को कलीसिया में जानता हूँ जो अपने घर में अपने दरवाजों को खोला और पवित्र आत्मा से भरे गए.
When we are alone, we can search our hearts.
और जब अपने रूम कमरे में होते हैं अपने हृदय को हम जांच पाते हैं.
A young brother wrote to me.
और एक भाई ने मुझे एक जवान भाई ने
brother
लिखा.
Zach, I could not come for that meeting.
और उन्होंने लिखा मैं उस सभा में नहीं आ पाया.
But I heard the tape.
और मैंने उस
where you spoke about being filled with the Holy Spirit.
उस वचन को सुना पवित्र आत्मा के बारे में जो बांटा.
I feel so sad that I couldn't come for that meeting.
और मैं बहुत ही दुखी हुआ कि मैं उस सभा में नहीं आ पाया.
So I knelt down in my room.
और मैं अपने रूम में कमरे में घुटने टेके.
Give me that in my room. Why should I be there?
और मैं वहां नहीं जा सकता मुझे अपने कमरे में वो अनुभव दे.
I yield everything.
और मैं अपने सब को दे दिया.
Nothing happened.
कुछ नहीं हुआ.
I said, Lord, why?
और क्यों ऐसा?
Is there some thing I've still not yielded, some room still not open?
और क्या ऐसे और भी कमरे हैं जो मैंने शायद नहीं दिए प्रभु को?
And the Lord showed him.
और परमेश्वर ने उसे दिखाया.
One area in his life.
एक क्षेत्र उसके जीवन का.
It's not a sinful area.
वो शायद पाप में एक क्षेत्र नहीं है.
Sometimes I'm good things also we have to give up.
और कुछ अच्छी चीजें भी हमें छोड़ना होता है.
Abraham had to offer Isaac. What was wrong with Isaac?
और अब्राहम को इसाक का बलिदान करना इसाक में क्या गलती थी?
God may ask for some good things also. Give up that.
और प्रभु शायद कोई अच्छी चीजें भी मांग सकता है कि उसको आप छोड़ दे.
Abraham gave it up.
और अब्राहम ने दे दिया.
And he was blessed.
और वो आशीषित हुआ.
So sometimes God may ask you to give up something which is lawful but which is not profitable for you.
कई बार परमेश्वर ऐसी चीजों को मांगेगा जो लाभदायक है लेकिन उससे कोई आपको आगे लाभ नहीं
And
होता है.
You say no.
आप कहेंगे नहीं.
He was not filled with the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाएंगे.
So finally he said, Lord, take it. I'm willing to give it up.
और वो अंत में कहता है कि प्रभु मैं मुझे
नहीं चाहिए ले. Even though it's a lawful thing, I'm giving it up.
और ये अच्छी और ये व्यवस्था की है लेकिन लाभदायक नहीं है.
Immediately he was filled with the Holy Spirit.
और तुरंत ही पवित्र आत्मा से वो भर गया.
And he also spoke in tongues.
और पवित्र अन्य भाषा में बोलने लगा.
He was all alone.
वो अकेला था.
It can happen to you, my brother.
ये आपके साथ भी भाई हो सकता है भाई बहनों.
One more thing I want to say.
और एक बात मैं कहना चाहता
हूँ. This is not a once for all experience.
और ये एक ही समय का एक अनुभव नहीं.
There's a narrow gate and a narrow way that leads to life.
और ये एक बहुत ही सकरा रास्ता है जो एक सकरे रास्ते से गुजरता है.
So once you enter in, you must every day seek to be filled with the Holy Spirit.
और जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा से आपको भरना है.
Because I can open all the rooms of my house.
और जब अपने सारे कमरे को घर के खोल देता हूँ.
And after one month, I can close one room.
और फिर एक महीने के बाद फिर उसको एक कमरे को बंद कर देता हूँ.
That happens.
ये होता है.
People who yielded everything.
पहले लोगों ने सब कुछ दे दिया.
10 years later, they begin to be little unrighteous with money.
और फिर 10 साल के बाद वो पैसों के साथ अनैतिकता या अधर्म के साथ व्यवहार करने लगे.
One room is closed.
एक कमरा का दरवाजा बंद हो गया.
They have lost the fullness of the Spirit.
और पवित्र आत्मा की भरपूरी को खो दिया उन्होंने.
You have to be watchful every day.
और आपको सावधान रहना है प्रतिदिन.
So I tell people,
मैं लोगों से कहता हूँ,
continuously filled with the Holy Spirit.
निरंतर पवित्र आत्मा से भरने के लिए.
Keep a good conscience.
एक अच्छा विवेक रखें.
And always humble yourself.
और हमेशा अपने आप को नम्र बनाए रखें.
The Spirit of grace comes upon the humble.
और अनुग्रह का आत्मा दीनों पर आता है.
I'm not giving you 25 rules, only 2.
और 25 मैं आपको नियम नहीं, लेकिन दो ही नियम दे रहा हूँ.
Keep a good conscience.
एक अच्छा विवेक रखें.
And humble yourself.
अपने आप को दीन बनाए रखें.
Filled with the Holy Spirit every day.
पवित्र आत्मा से प्रतिदिन भरेंगे.
Ask God to show you if there's any area you have not yielded.
और परमेश्वर से पूछे कि प्रभु हम ऐसी कोई चीज़ है जो आपने समर्पित नहीं की.
Filled with the Holy Spirit is the most important thing in the Christian life.
और मसीह जीवन में पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.
My whole life and ministry is based on being filled with the Holy Spirit.
और मेरा पूरा जीवन और सेवकाई पवित्र आत्मा के भरे जाने पर ही आधारित है.
I don't believe what the brethren teach. I don't believe what the LEF teaches, and I don't believe what the Pentecostals teach.
मैं इस चीज पर भरोसा विश्वास नहीं करता कि ब्रदरन या कोई और पेंटिकोस्ट पंथ क्या प्रचार करता है.
Or layman's evangelical fellowship.
और दूसरी कोई कलीसिया.
Anyone.
कोई भी.
Or Baptist.
बपतिस्मा भी नहीं.
I believe what Scripture says.
मैं विश्वास करता हूँ क्या वचन कहता है.
The Lord is standing at your door and knocking.
और परमेश्वर आपके दरवाजे पर खड़ा और खटखटा रहा है.
Open your heart and ask him to fill you.
और अपने दरवाजे को खोले और उसको भरने की अनुमति दे.
Let's pray.
प्रार्थना करें.
Heavenly Father,
स्वर्गीय पिता,
I pray that you will meet with all of us.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब से.
Everyone here needs to be filled with the Holy Spirit.
हर एक व्यक्ति जो है यहाँ प्रभु पवित्र आत्मा से भरे जाना चाहिए.
And to be continually filled with the Holy Spirit.
और निरंतर पवित्र आत्मा से भरा जाए.
I pray you will create a thirst and a hunger in our hearts.
प्रभु ऐसी प्यास और भूख हमारे हृदय में आप उत्पन्न करें.
Pray in Jesus' name.
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं.
So you missed about 25 minutes of your lunch time.
और 25 मिनट आपका खाने का चले गया है.
I hope you feel it was worth it listening to what you heard.
और जो आपने सुना है उसको आपने समझा है.
थैंक यू.